दानियल की पुस्तक क्रमांक 139।
दानियल 51 तक की खुशी नूख भविष्यवाणी का आधुनिक राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ सामंजस्य, अंतिम राष्ट्रपति के रहस्य का खुलासा।
हम दानियल की पुस्तक के अध्याय 11 के पद 40 का उसी अध्याय के पद 1 और 2 के साथ सामंजस्य पर विचार कर रहे हैं। पद 1 1989 से माह अंत का समय केवल निर्दिष्ट करता है और पद 40 भी 1990 से माह अंत का समय चिह्नित करता है, सोवियत संघ के पतन के साथ, जिसका प्रतिनिधित्व 9 नवंबर 1990 से को बर्लिन की दीवार के गिराए जाने से होता है। दूसरा पद 1989 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के 6 राष्ट्रपति को सभी राष्ट्रपतियों में सबसे धनी के रूप में पहचानता है और इस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप की ओर संकेत करता है। ऐसा करते हुए ये बताता है कि ट्रंप पूरे यूनान को उकसाएगा, जो तीसरे पद में वर्णित सिकंदर महान का यूनानी साम्राज्य था। तीसरे और चौथे पद का यूनानी राज्य दानियल अध्याय 11 में एक विश्वव्यापी राज्य का प्रतीक है। विलियम मिलर ने इतिहास और भविष्यवाणी एक मत है ये उक्ति गढ़ी और डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास इस बात का अखंडनीय प्रमाण है प्रस्तुत करता है कि वे न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के पिछले 8 राष्ट्रपतियों में सबसे धनी थे, बल्कि ये भी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वैश्वीकरणवादी और समूचा विश्व डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी घृणा करते हैं जो इतनी अतार्किक है कि बहुत से लोग उसे पागलपन करार देते हैं।
1985 से आरंभ होने वाले अंतिम 8 राष्ट्रपतियों में से पहले ने कई तरीकों से ट्रंप का स्पष्ट रूप से प्रतिरूप प्रस्तुत किया और इस प्रकार ये पुष्टि हुई कि दूसरे पद में उल्लिखित 6 राष्ट्रपति अंततः 8वां और अंतिम राष्ट्रपति होगा। 8 की श्रृंखला में पहले के रूप में रीगन 8वें और अंतिम का प्रतिरूप ठहरते हैं, क्योंकि यीशु हमेशा किसी बात के अंत को उसकी शुरुआत से दर्शाते हैं।
1985 में अंत के समय के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की गवाही भविष्य सूचक रूप से उस राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करती है जो 8 राष्ट्रपतियों में अंतिम होगा। रीगन के बाद 7 राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि संयुक्त राज्य बाइबल की भविष्यवाणी के 6 राज्य के रूप में अपना अस्तित्व शीघ्र आने वाले रेववायर के कानून के समय समाप्त कर देते हैं, और उस रेववायर के कानून तक पहुंचते हुए संयुक्त राज्य पशु के छवि बनाते हैं, और वह पशु 7 पशुओं में से 8वां 1989 में अंत के समय के पाल बाद देश राष्ट्रपति रीगन था और अंतिम 8वां होगा अर्थात जो 7 में से है।
रीगन ने 12 जून 1987 को जर्मनी के वेस्ट बर्लिन में बर्लिन की दीवार के पास स्थित ब्रैंडनबर्ग गेट पर दिए अपने भाषण के दौरान सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचोव को संबोधित करते हुए कहा, महासचिव गोर्बाचोव, यदि आप शांति चाहते हैं, यदि आप सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के लिए समृद्धि चाहते हैं, यदि आप उदारीकरण चाहते हैं, यहाँ इस द्वार पर आइए। श्री गोर्बाचोव, इस द्वार को खोलिए। श्री गोर्बाचोव, इस दीवार को ढहा दीजिए। पिछले 8 राष्ट्रपतियों में पहले की ये सबसे प्रसिद्ध पंक्ति 2 वर्ष बाद 9 नवंबर 1981 को दीवार के ढहाए जाने से साकार हुई।
इसी क्रम में दीवार गिराने पर रीगन का जोर उस 8वें राष्ट्रपति को संबोधित करता था जिसने 6 राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ते समय अपनी चुनावी मुहिम को दीवार बनाने के वादे पर आधारित किया। आखिरी 8 राष्ट्रपतियों में पहले ने दीवार गिराने की बात कही और बर्लिन की दीवार 1941 में अंत के समय गिरा दी गई। जल्द आने वाले रविवार कानून के समय चर्च और राज्य के पृथक्करण की दीवार गिरा दी जाएगी, जैसा कि 1941 में हुई शुरुआत द्वारा दर्शाया गया है। उस अवधि के मध्य में 6 राष्ट्रपति, जो वैश्विकतावादियों को उकसाता है, ऐसी दीवार बनाने का प्रयास करता है जिसे वे नहीं चाहते, और जब वो फिर से उन 7 में से 8वां राष्ट्रपति होता है तब एक और दीवार गिर जाएगी। 8 राष्ट्रपतियों में पहला एक दीवार के गिराए जाने से चिह्नित है जिसने अंत के समय को चिह्नित किया था, जैसा कि दानियल अध्याय 11 पद 40 में दर्शाया गया है, और 8 राष्ट्रपतियों में अंतिम एक दीवार के गिराए जाने से चिह्नित है जो 1,44,000 की मुहरबंदी के समय के अंत को
चिह्नित करती है, जैसा कि दानियेल अध्याय 11 पद 41 में दर्शाया गया है।
राष्ट्रपति रीगन एक पूर्व डेमोक्रेट से रिपब्लिकन बने नेता थे। पूर्व मीडिया स्टार अपनी स्पष्ट वक्तृत्व कला और गहरे हास्य बोध के लिए प्रसिद्ध तथा वॉशिंगटन डीसी के प्रतिष्ठान के खिलाफ अभियान चलाने वाले एक राजकोषीय रूढ़वादी, फिर भी राष्ट्र की राजधानी में जमे प्रतिष्ठान दलदल के खिलाफ अपने पहले अभियान की बयानबाजी के बावजूद उन्होंने अंततः अपने मंत्रिमंडल के पदों पर उस समय तक के किसी भी आधुनिक राष्ट्रपति की तुलना में अधिक प्रतिशत में माने हुए वैश्यव्यक्तावादी राजनेताओं की नियुक्ति की। उन्होंने तो यहां तक किया कि जॉर्ज बुश प्रथम को अपना उपराष्ट्रपति चुना, ऐसे व्यक्ति जिनकी पारिवारिक जड़ें वैश्यव्यक्तावादी इतिहास में काफी पीछे तक फैली हुई हैं। ट्रंप ने उस स्थापित व्यवस्था को साफ करने के वादे पर चुनाव अभियान चलाया, जिसे वे दलदल कहते थे, लेकिन अपने निकट सहयोगियों के चयन का उनका रिकॉर्ड उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। उनमें से लगभग सभी लोग उसी दलदल के प्रतिनिधि थे जिसका ट्रंप कट्टर विरोध करते हैं। रीगन की ही तरह ट्रंप भी पूर्व डेमोक्रेट से रिपब्लिकन बने, पूर्व मीडिया स्टार थे, अपनी वक्तृत्व कला और गहरे हास्य बोध के लिए जाने जाते थे और आर्थिक मामलों में रूढ़िवादी थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतिम राष्ट्रपति वही होगा जो उस समय पद पर होगा जब संयुक्त राज्य अमेरिका में पोपतंत्र की मूर्ति पशु की मूर्ति स्थापित की जाएगी। अतः 8वां ननबीसे से गिने जाने वाला 8वां और अंतिम राष्ट्रपति एक अजगर शक्ति के विरुद्ध युद्ध में शामिल होगा, क्योंकि अजगर के साथ लंबे समय तक चले युद्ध के दौरान ही 538 में एक अजगर शक्ति द्वारा पोपतंत्र को पहली बार सिंहासन पर बैठाया गया था। फिर 17 हमली तौटी में नुआन आटवता में उसे सिंहासन से उतार दिया और उसे फिर से सिंहासन पर बैठाया जाएगा उस अजगर शक्ति द्वारा, जिसका प्रतिनिधित्व उन 10 राजाओं द्वारा होता है जो अपना 7वां राज्य पोपतंत्र को देने पर सहमत होते हैं और जो बाद में उसे आग से जलाकर और उसका मांस खाकर पोपतंत्र के उस पशु को पदच्युत कर देंगे जब वो बिना किसी सहायक के अपने अंत तक पहुंच जाएगी। जो 8वां राष्ट्रपति होगा और जो 7 में से ही है, वही राष्ट्रपति एक ड्रैगन शक्ति के विरुद्ध युद्ध में भी शामिल होगा। उस युद्ध की पहचान तब होती है जब 6ठा और सबसे धनी राष्ट्रपति पूरी वैश्विकतावादी ड्रैगन शक्तियों को उकसाता है। 1979 से शुरू हुए अंतिम 8 राष्ट्रपतियों में से 2 का निधन हो चुका है, जिससे 6 ऐसे संभावित राष्ट्रपति बचते हैं जो एक ड्रैगन शक्ति के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो सकते हैं। उन 6 संभावनाओं में से 4 खुले तौर पर ड्रैगन शक्ति से संचालित वैश्विकतावादी हैं। 6 में से 1 अपने पिता की तरह स्वयं को रिपब्लिकन बताता है, पर वो केवल नाम का रिपब्लिकन है और अपने पिता की तरह वैश्विकतावादी ड्रैगन शक्ति का प्रतिनिधि है। 6 जीवित राष्ट्रपतियों में से केवल 1 स्पष्ट रूप से वैश्विकतावादी नहीं है, और वही वो राष्ट्रपति है जो वैश्विकतावादियों को उकसाता है। पिछले 8 राष्ट्रपतियों में वही एक ऐसा है जो ड्रैगन शक्ति के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने के संदर्भ में पापसी की प्रतिमा के उस तत्व को पूरा कर सकता है। प्रथम रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध रूप से अमेरिकी गृहयुद्ध से संबंधित एक धर्म ग्रंथ का उद्धरण दिया था जो इसी तथ्य को संबोधित करता है।
और यीशु ने उनके विचार जानकर उनसे कहा, हर वो राज्य जो अपने ही विरुद्ध बैंटा हुआ है उजाड़ हो जाता है, और हर नगर या घर जो अपने ही विरुद्ध बैंटा हुआ है स्थिर न रह सकेगा। और यदि शैतान शैतान को ही निकालता है तो वो अपने ही विरुद्ध बैंटा हुआ है, तब उसका राज्य कैसे स्थिर रहेगा? और यदि मैं बेअल्जेबूल के द्वारा दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे पुत्र उन्हें किसके द्वारा निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारे न्यायी होंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दुष्टात्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम पर आ गया है। मत्ती 12:2-28।
ड्रैगन का युद्ध उस सबसे धनी राष्ट्रपति के विरुद्ध जिसने यूनान के राज्य को उकसाया, केवल डोनाल्ड ट्रंप और वैश्विकतावादियों के बीच ही हो सकता है, क्योंकि बाकी के 5 जीवित राष्ट्रपति अमेरिका विरोधी वैश्विकतावादी हैं। जब लिंकन ने राष्ट्र के गुलामी समर्थक और गुलामी विरोधी 2 खेमों में विभाजन पर बोलने के लिए पूर्ववर्ती पद उद्धृत किए, तो वे गुलामी समर्थक डेमोक्रेट्स और गुलामी विरोधी रिपब्लिकनों को संबोधित कर रहे थे, और ऐसा करते हुए वे अंतिम दिनों के उस युद्ध को भी संबोधित कर रहे थे जो वैश्विकतावादी डेमोक्रेट्स से जुड़ा है और जिसे पिछले रिपब्लिकन राष्ट्रपति अपने मागावाद के आंदोलन से भड़काते हैं, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और नेतृत्व करते हैं। पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति के रूप में लिंकन अंतिम रिपब्लिकन राष्ट्रपति का प्रतिरूप बनता है। अंतिम राष्ट्रपति को 1997 में अंत के समय के रिपब्लिकन राष्ट्रपति द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये दोनों साक्षी जिस राष्ट्रपति का प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं उसे रिपब्लिकन के रूप में पहचानते हैं। 1997 में अंत के समय का रिपब्लिकन राष्ट्रपति केवल रिपब्लिकन ही नहीं था, बल्कि वो अंतिम 8 राष्ट्रपतियों में पहला भी था। अंतिम राष्ट्रपति का प्रतिरूप पहले राष्ट्रपति और पहले सर्वोच्च सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन द्वारा भी प्रस्तुत किया गया होगा।
वॉशिंगटन को 1776 द्वारा दर्शाए गए अवधि में प्रथम राष्ट्रपति द्वारा प्रतीकित माना गया था, और वही प्रथम राष्ट्रपति पेटन रैंडोल्फ उन 7 पुरुषों में से एक था जिन्होंने 7 पुरुषों द्वारा दर्शाए गए एट ओवर द ओन्सगार्ड डाउग्राउ सेवा की। रैंडोल्फ 8 में पहला था, और इसलिए इसने रीगन का प्रतिनिधित्व किया जो 8 में पहला था, और वो 7 में से अथब्रा था। अतः रैंडोल्फ ने वॉशिंगटन सेकंड रेटियर, लिंकन प्रथम रिपब्लिकन राष्ट्रपति, रीगन अंतिम 8 का प्रथम राष्ट्रपति, और अक्टूबर 1999 के बाद के 8 नॉट शर्टर राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व किया जो भविष्य ब्वाकिस्ट की अनिवार्योनी के अनिवार्यता के अनुसार 7 में से अथब्रा होगा।
वॉशिंगटन का प्रतीक जॉन हैनकॉक भी होगा जो 1798 द्वारा दर्शाए गए इतिहास में राष्ट्रपति था, और जो रैंडोल्फ की ही तरह 8वां जो 7 में से था। रैंडोल्फ वॉशिंगटन का प्रतीक रहा था, इसलिए जब हैनकॉक रैंडोल्फ के साथ 7 में से 8वें के रूप में मेल खाता है तो हैनकॉक 8वां नोदुए के बाद के 8वें राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है जो भविष्यवाणी के अनुसार अनिवार्यतः 8वां जो 7 में से था होगा।
रैंडोल्फ, हैनकॉक, वॉशिंगटन, लिंकन और रीगन सभी अंतिम राष्ट्रपति का प्रतिरूप है। उन्हीं साक्षियों में से 2 ये स्थापित करते हैं कि अंतिम राष्ट्रपति रिपब्लिकन होगा, 2 ये स्थापित करते हैं कि अंतिम राष्ट्रपति 8वां होगा, अर्थात वो 7 में से होगा। एडिशन 79 में अंत के समय के बाद के 8 राष्ट्रपतियों में से 5 जीवित राष्ट्रपति ये इंगित करते हैं कि केवल ट्रंप के पास ड्रैगन शक्ति के साथ युद्ध में शामिल होने की राजनीतिक विचारधारा है।
लिंकन से पहले डेमोक्रेट जेम्स बुकनन थे, जिन्हें निष्पक्ष इतिहासकार प्रारंभिक अमेरिकी इतिहास का सबसे अप्रभावी राष्ट्रपति मानते हैं, और जिनके अप्रभावी नेतृत्व ने मूलतः अमेरिकी गृहयुद्ध को जन्म दिया। लिंकन के शपथ लेने से पहले ही दक्षिणी राज्यों ने संघ से अलग होना शुरू कर दिया था, और लिंकन के पदग्रहण के मात्र 1 महीने बाद ही पहली गोलियां चलाई गईं। बुकनन ने उन आंदोलनों को गति दी जिनके परिणाम स्वरूप वो युद्ध हुआ जिसे लिंकन को मजबूरन सुलझाना पड़ा। रेगन से पहले जो राष्ट्रपति थे वे आधुनिक समय के सबसे अप्रभावी थे। कार्टर, एक डेमोक्रेट, ने ईरान में स्थित कट्टरपंथी इस्लाम को सही ढंग से संबोधित करने में अपनी अक्षमता के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका को शर्मिंदा किया। ट्रंप से पहले डेमोक्रेट ओबामा थे, जिन्होंने जानबूझकर सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विभाजन शुरू किए जो तब से केवल बड़े हैं। उनके अक्षम नेतृत्व की मिसाल बुराक बेक्यूनन और कार्टर दोनों में मिलती है, लेकिन जिस दौर में वे पद पर थे मुख्यधारा मीडिया पहले ही अडोल्फ हिटलर के राइच मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एनलाइटमेंट एंड प्रोपागेंडा के समानांतर रूप में उभरना शुरू कर चुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका की सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और धार्मिक संस्थाओं पर ओबामा के हमलों पर जो लोग देखना नहीं चाहते थे उनके लिए पर्दा डाल दिया गया, और संविधान की रक्षा की शपथ लेने वाले के रूप में उनकी अक्षम्यता को सावधानी से छिपाया गया। ईरान में स्थित कट्टर इस्लाम को सही ढंग से संबोधित करने में अपनी अक्षमता के कारण ओबामा ने संयुक्त राज्य अमेरिका को शर्मिंदा किया। जब 2024 में ट्रंप फिर से निर्वाचित होंगे 1949 में रीगन के बाद से आठवें राष्ट्रपति के रूप में, तब उनके पहले एक बार फिर एक वैश्विकतावादी ड्रैगन संचालित डेमोक्रेट होगा, जो अब इतिहास के सबसे अप्रभावी राष्ट्रपति का ताज पहन चुका है, जिसने ईरान में स्थित कट्टर इस्लाम से निपटने के अपने प्रयास में बार बार संयुक्त राज्य को शर्मिंदा किया है। हालांकि एक बार फिर आधुनिक मुख्यधारा मीडिया, जिसका आदर्श उदाहरण लोक प्रबोधन और प्रचार का राइख मंत्रालय है, उस स्पष्ट वास्तविकता को दबाने का काम करता है। जब रीगन ने पद संभाला, तब ईरान में स्थित कट्टरपंथी इस्लाम से जुड़ा एक अनसुलझा संकट डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति द्वारा अनसुलझा ही छोड़ दिया गया था। रीगन ने तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका और कट्टरपंथी इस्लाम, जिसका प्रतिनिधित्व ईरान करता है, के बीच के तनाव की दिशा उलटने के लिए कदम उठाए। जब ट्रंप ने पद संभाला, तब फिर से ईरान में स्थित कट्टरपंथी इस्लाम से जुड़ा एक अनसुलझा संकट न केवल अनसुलझा छोड़ा गया था, बल्कि डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति द्वारा वित्त पोषित भी किया गया था। ट्रंप ने तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका और कट्टरपंथी इस्लाम, जिसका प्रतिनिधित्व ईरान करता है, के बीच के तनाव की दिशा उलटने के लिए कदम उठाए। वर्तमान डेमोक्रेट पार्टी के राष्ट्रपति ने ट्रंप द्वारा हासिल की गई सारी प्रगति को उलट दिया और अब बाइडेन के अप्रभावी नेतृत्व के कारण पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध में खींचा जा रहा है। ये न केवल इस्लाम के संदर्भ में किए गए उस काम को, जिसका प्रतिनिधित्व कार्टर की अकार्यक्षमता और ओबामा द्वारा इस्लाम को बढ़ावा देने से होता है, पूरा करता है, बल्कि बुकानन द्वारा युद्ध शुरू करने के काम को भी, जिसे एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति को सुलझाना पड़ा, पूरा करता है। पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति की तरह 2020 के चुनाव में ट्रंप की राजनीतिक हत्या वैश्विकतावादी अजगर शक्तियों ने कर दी। जब उसे सड़कर पर मरा हुआ समझा जा रहा था, तब धरती के पशु के वैश्विकतावादी और समूचे विश्व के वैश्विकतावादी जश्न मनाने लगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में भविष्यवाणी की गई थी।
और जब वे अपनी गवाही पूरी कर लेंगे, तो अथाह गर्त से ऊपर आने वाला पशु उनके विरुद्ध युद्ध करेगा और उन पर प्रबल होकर उन्हें मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े नगर की सड़क पर पड़ी रहेंगी, जिसे आत्मिक अर्थ में सदोम और मिस्र कहा जाता है, जहां हमारे प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और लोगों, कुलों, भाषाओं और जातियों के लोग 3.5 दिन तक उनकी लाशों को देखेंगे और उनकी लाशों को कब्रों में रखने नहीं देंगे, और जो पृथ्वी पर बसते हैं वे उनके कारण आनंदित होंगे और खुशियां मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार भेजेंगे, क्योंकि इन दो भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी पर बसने वालों को कष्ट दिया था। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें प्रवेश कर गई और वे अपने पैरों पर खड़े हो गए, और जिन्होंने उन्हें देखा उन पर बड़ा भय छा गया। प्रकाशित वाक्य 10:10।
हम अब 2024 में पहुंच चुके हैं, जहां ट्रंप अपने पैरों पर खड़े हैं और ड्रैगन दुनिया, जो 6 जनवरी 2021 से जश्न मना रही थी और मौज मस्ती कर रही थी, अब महान भय का सामना कर रही है। मुख्यधारा मीडिया MSM घबराई हुई है। उनके अपने टॉकिंग पॉइंट्स अब ये चिंता उजागर करने लगे हैं कि जैसा कि एक पुराने रॉक एंड रोल गीत में कहा गया है, वो मखारा बूढ़ा आदमी जिसे उन्होंने राजा चुना है, में ये क्षमता नहीं है कि वो ट्रंप के आंकड़ों के इतना करीब बना रह सके कि उनकी वोटिंग मशीनें बाइडेन को अंतिम बढ़त दिला सके। मुख्यधारा मीडिया आज उतनी ही प्रचार मशीन है जितनी हिटलर के दौर में राइख मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एनलाइटनमेंट एंड प्रोपेगेंडा थी। ये तथ्य इतनी बार और इतनी स्पष्टता से सिद्ध हुआ है कि इसके उलट होने की कोई गणितीय संभावना नहीं बचती। हर बार जब कोई नया वैश्वादी चर्चा बिंदु व्यापक समाज में पेश किया जाता है, बार बार ये दर्ज किया गया है कि ड्रैगन की प्रचार मशीन द्वारा नियंत्रित विभिन्न संचार माध्यम इस घटना या उस मुद्दे का वर्णन करते समय शब्दशः एक जैसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं। यदि आप में से कोई भी उस पुराने बच्चों के खेल से परिचित है जिसे टेलीफोन कहा जाता है, या कभी कभी चाइनीज विस्पर्स, तो आप जानते हैं कि जब लोग गोल घेरा बनाकर बैठते हैं और खेल चलता है, तो पहला व्यक्ति अगल बगल वाले के कान में फुसफुसाता है और फिर वही फुसफुसाहट पूरे घेर में दोहराई जाती है। तो वो शुरुआती फुसफुसाहट जो घेर में घूमती है, हमेशा बदलकर कुछ और ही बन जाती है, जो पहली फुसफुसाहट का आशय नहीं था, फिर भी मुख्यधारा का मीडिया अपने अनुयायियों से ये उम्मीद करता है कि वे माने कि इस देश और दुनिया भर का हर पत्रकार किसी तरह किसी विषय या घटना पर ड्रैगन का पक्ष समझाने के लिए वही शब्द और वाक्यांश चुन लेता है। सैकड़ों तथाकथित पत्रकारों ने उसी घटना को देखा और न सिर्फ वही निष्कर्ष निकाला बल्कि उस घटना का वर्णन करने के लिए हूबहू वही शब्द और वाक्यांश चुने।
हम इस समय जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो वैश्विकतावादियों के प्रचार तंत्र पर कोई हमला नहीं है, ये केवल पृथ्वी ग्रह पर अब चल रहे आध्यात्मिक युद्ध के एक भविष्य सूचक लक्षण की पहचान है। मसीह के समय में यहूदियों ने अपने मसीहा को अस्वीकार करते हुए अंततः सार्वजनिक रूप से कैसर को अपना राजा चुना। उसी विवादास्पद काल में महायाजक ने मसीह की हत्या के पक्ष में ऐसा तर्क दिया जो शैतानी था और त्रुटिपूर्ण तर्क पर आधारित था, परंतु वो साथ ही सटीक भी था।
और उनमें से एक जिसका नाम कैफा था, जो उसी वर्ष महायाजक था, ने उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते, न ये विचार करते कि हमारे लिए ये उचित है कि लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नाश न हो। और ये उसने अपनी ओर से नहीं कहा, परंतु उस वर्ष महायाजक होने के कारण उसने ये भविष्यद्वाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और केवल उसी जाति के लिए नहीं, परंतु ये भी कि वो परमेश्वर की बिखरी हुई संतानों को एकत्र करके एक कर दे। यूहन्ना 11 अंटन्यास तक 5।
कायफा मसीह पर हमला करने के लिए एक तर्क गढ़ रहा था, और ऐसा करते हुए वो वास्तव में एक सटीक भविष्यवाणी कर रहा था। वो ये नहीं मानता था कि मसीह को मानव जाति के लिए बलिदान होना चाहिए, वो तो बस उन्हें मार देना चाहता था। ड्रैगन शक्ति का मुख्य धारा का मीडिया अब ट्रंप के साथ भी कुछ वैसा ही कर रहा है। वे जनता के मन में ये भय बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि ट्रंप फिर से चुने गए तो वे एडॉल्फ हिटलर की तरह तानाशाह बन जाएंगे। डेमोक्रेट पार्टी दासता का समर्थन करने वाली पार्टी है और नाजी पार्टी जैसी विशेषताएं रखती है जिसमें केवल जर्मन नहीं बल्कि विश्वव्यापी प्रचार तंत्र भी शामिल है, लेकिन वे दावा कर रहे हैं कि यदि ट्रंप चुने गए तो लोकतंत्र को उलट दिया जाएगा और ट्रंप एडॉल्फ हिटलर की तरह तानाशाह बन जाएंगे।
यही ठीक वही बात है जिसे परमेश्वर का वचन संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतिम राष्ट्रपति के बारे में बताता है। हालांकि मुख्य धारा का मीडिया अजगर से प्रेरित कायफा की तरह ये नहीं समझता कि उसके तर्क बिंदु भविष्य सूचक हैं और वास्तव में पूरे होंगे।
हमारा देश संकट में है। वो समय निकट आ रहा है जब इस देश के विधायक प्रोटेस्टेंटवाद के सिद्धांतों का ऐसा त्याग कर देंगे कि वे रोमी धर्म त्याग को मान्यता देंगे। जिन लोगों के लिए परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया और उन्हें पोपवाद के कष्टदायक जुए को उतार फेंकने की सामर्थ्य दी, वे एक राष्ट्रीय अधिनियम द्वारा रोम के भ्रष्ट विश्वास को बल देंगे और इस प्रकार उस अत्याचार को उकसाएंगे जो केवल एक स्पर्श की प्रतीक्षा में है कि फिर से क्रूरता और निरंकुशता में भड़क उठे। हम पहले ही तीव्र गति से इस काल के निकट पहुंच रहे हैं। द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, खंड 4, खंड 7।
मुझे ज्ञात है कि जब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के डेमोक्रेट्स के भ्रष्ट तत्वों, उन स्वयं घोषित रिपब्लिकन्स की जो वास्तव में ग्लोबलिस्ट्स हैं और दुनिया की प्रगतिशील ग्लोबलिस्ट्स की पहचान करता हूं, तो पाठक ये मानने लग सकता है कि मेरा रिपब्लिकन पार्टी या डोनाल्ड ट्रंप के प्रति किसी प्रकार की राजनीतिक सहानुभूति है। ये वास्तविक तथ्यों से बहुत दूर है। अंतिम राष्ट्रपति एक तानाशाह बनने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे मेनस्ट्रीम मीडिया भविष्यवाणी कर रहा है। हालांकि उन्हें वास्तव में जिसके बारे में वे भविष्यवाणी कर रहे हैं उसके संबंध में उतना ही ज्ञान है जितना कायफस को था, उससे अधिक नहीं। हम केवल द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ ह्यूमन इवेंट्स से संबद्ध भविष्य सूचक गतिशीलताओं की पहचान कर रहे हैं जिन्हें एज़ेकियल्स व्हील्स विद इन व्हील्स द्वारा निरूपित किया गया है।
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।